ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। हम एक बार फिर साल के उस मोड़ पर हैं जहां शिवरात्रि का पर्व बस आ ही गया है, और साथ ही इस साल और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुंभ का मेला भी लगा है। करोड़ों लोग, चाहे वो देश से हों या फिर विदेश से, इस मेले में पहुंचते हैं और पवित्र गंगा स्नान करते हैं, संगम का आनंद लेते हैं और कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि शायद मुझे मेरे कर्मों से मुक्ति मिलेगी। ये पर्व और कुंभ का मेला, क्या है इसका सचमुच का आध्यात्मिक रेलेवेंस, आज इसी पर बातचीत शुरू करते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति।
ओम शांति
सिस्टर शिवानी। शिवरात्रि का पर्व बस हमारे सामने है और साथ ही जैसा हमने कहा कि कुंभ का भी मेला इस साल लगा है 12 साल बाद, लोग इंतजार करते हैं, भक्त जन भी। और अब जो हम देख रहे हैं, जनरली एक जो बात देखी है कि पहले के मुकाबले इस साल ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंच रहे हैं, करोड़ों की संख्या में, और सिर्फ भारत से ही नहीं, मतलब पूरी दुनिया से, और सिर्फ भारतीय ही नहीं, हर तरह की आध्यात्मिक खोज रखता हुआ व्यक्ति या फिर सैलानी भी वहां पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ जो हम समाज में देख रहे हैं जब शिवरात्रि की बात होती है कि रात्रि का समय, यानी कि जो बुराइयां हैं, जो नेगेटिविटी है, वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, डर भी बढ़ता जा रहा है, तो इन दोनों का कहीं कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या?
या वेरी ब्यूटिफुल। इसीलिए जैसे आपने कहा, ये एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन ही अभी हो रहा है, या कहें दोनों का संगम हो रहा है। ये दोनों का संगम है ना, संगम इन द सेंस एक ही समय पर दोनों चीजें हो रही हैं। आज कुंभ के मेले पर भी क्या है, एक ही जगह पर एक काला पानी भी है और सफेद पानी भी है, दोनों का संगम है। तो ये दोनों का संगम किस चीज का यादगार है कि एक ऐसा समय है जब तमो प्रधानता, विकार, पतित, यू नो, बुराइयां, ये भी एकदम अति पे हैं, इसलिए यू हैव काला पानी। एंड फिर दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, न्यू कॉन्शियसनेस एंड विच विल गिव द न्यू वर्ल्ड। तो ये दोनों का संगम मतलब क्या कि रात्रि फिर घोर रात्रि, आपने कहा अब रात्रि भी जैसे अति पे आ रही है, हम कह रहे हैं शिवरात्रि, लेकिन हर साल हम देख रहे हैं कि जो रात्रि है, जो समय सोसाइटी की जो रात्रि है, वो और भी ज्यादा इस साल में हमने
साल के अंदर अंदर ही बहुत कुछ
ऐसा कुछ देख लिया है, कितना कुछ देखा है। लेकिन फिर उसमें हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे उठे, you know, बहुत सारे लोगों की एक अवेकनिंग हुई, बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे मिलकर कहा कि नहीं, हमें कुछ करना भी है। सो बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग। एंड कई बार ये लगता है कि ये पैराडॉक्सिकल हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ज्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रहे हैं, जैसे आपने कहा कुंभ पर भी जा रहे हैं, और फिर भी अति भी ज्यादा हो रही है। क्योंकि जब विकारों की अति हो रही है, मतलब कलयुग की अति हो रही है। अब किसी भी चीज की जब अति होगी, फिर जाके उसका अंत भी होगा, लेकिन उसका अंत होने के साथ साथ एक और चीज की शुरुआत भी तो होगी। इट्स लाइक हम इस मकान में रह रहे हैं, ये मकान पुराना होता जा रहा है, होता जा रहा है, अब तो लिटरली टूटने पर आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे गिर रहा है। लेकिन पुराना मकान टूटने के साथ साथ हमने नए मकान की कंस्ट्रक्शन भी तो शुरू कर दी ना, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला कि वो पुराना मकान टूटेगा, फिनिश होगा और उस जगह पर नया मकान खड़ा होगा। नहीं, हमें दिख गया कि हमारा पुराना टूट रहा है, तो हमने नया बनाना शुरू कर दिया। तो ये संगम आने वाला है जब पुराना बिल्कुल टूटने वाला है और नया साथ साथ रेडी खड़ा हो रहा है। तो ये वो समय है जब दोनों कट्ठे दिखेंगे। आपको आपके दोनों मकान कट्ठे दिख रहे हैं कि ये गिर रहा है, ये बन रहा है, एंड विच इज गुड।
अब हमने क्या करना है,
अब हमें चूज कर,
यू नो, बिकॉज डेफिनेटली हम इसको भी अभी नहीं छोड़ सकते जो मकान टूट रहा है। देखिए, हम समाज में रह रहे हैं, वो समाज में जो सचमुच में घोर रात्रि के क्षणों को महसूस कर रहा है, और हम उधर भी जाना चाह रहे हैं, उधर भी, इसीलिए हर कोई वो वहां डुबकी भी लगाना चाह रहा है कि मैं वहां एक बार हो आऊं, यू नो, मैं वो एहसास कर रहा हूं, मैं वो महसूस कर रहा हूं। और वहीं नहीं, कुंभ की बात नहीं करें, हर तरह के स्पिरिचुअल जर्नीज पर जा रहे हैं, सीकिंग कर रहे हैं, यू नो, हर कुछ, हर संडे सैटरडे लोगों ने अपनी जिंदगी के वो तय कर दिए कि हमने किसी ना किसी क्लास को अटेंड करना है। तो हम दोनों तरफ हैं, अब इन दोनों तरफ में इस तरफ का पलड़ा कैसे भारी होगा, ये कैसे संभव है?
जो आपने कहा, इसको भी नहीं छोड़ना है और यहां भी जाना है। एक्चुअली छोड़ना तो किसी को भी नहीं है और जाना भी कहीं नहीं है, क्योंकि ये जो पुरानी दुनिया है कलयुग, वो भी यही है, और जो नई दुनिया, जो न्यू वर्ल्ड, न्यू कॉन्शियसनेस चाहिए, वो भी यही है। अब क्वेश्चन ये है, सारा दिन में यूज किसको ज्यादा करना है? एक तरफ हमें दिखेगा कि काम विकार, क्रोध, ईर्ष्या, यू नो, अभी आप देखो कंपटीशन, कंपटीशन के नाम पे एक दूसरे को कुछ भी करना, गिराना, तोड़ना, कुछ भी करने के लिए रेडी है। मतलब वो वाले संस्कार जो हमारे हैं वो भी एकदम अति पर है। और दूसरी तरफ पवित्रता, वो भी पीपल आर सडनली टॉकिंग अबाउट इट, पीपल टॉकिंग अबाउट प्योरिटी, इंक्रीजिंग इन वेजिटेरियनिज्म, यू नो, इवन दीज बेसिक थिंग्स, फिर वैल्यूज, एथिक्स। आज कॉर्पोरेट सेक्टर बात कर रहा है एथिक्स, आज स्कूल्स एंड कॉलेजेस एथिक्स को फिर सब्जेक्ट बना रहे, फिर ऑफकोर्स स्पिरिचुअलिटी, फिर रिलीजन, वो भी है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी कमजोरियां हमें अति पे दिखाई दे रही हैं, तो हमने उसके सोल्यूशन भी ढूंढे। इट्स लाइक बीमारी बढ़ रही थी तो हमने इलाज भी ढूंढने शुरू किए। अब बीमारियां भी आ रही हैं और हम इलाज भी कर रहे हैं। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या मेरा इलाज हो रहा है। यू नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इलाज है क्या, वो मुझे अपने लिए क्लियर होना चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्या इलाज मुझे चाहिए इस दुख और दर्द से, और इलाज करना कैसे है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं सब कुछ कर रहा हूं, जैसे आपने कहा सबने अपने अपने फिक्स किए हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, विच इज ब्यूटिफुल। हम नहीं कर रहे थे लेट्स से 20 ईयर्स पहले या 10 ईयर्स पहले, तो मतलब एटलीस्ट एक अवेयरनेस कि मुझे कुछ करना है। अब लेकिन करते करते चेकिंग भी तो ना कि मैं कर रही हूं तो मेरा इलाज हो रहा है। ऐसे तो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जो हो रहा है ना, हमने उसको कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, सो इट्स बिकम टू कंपार्टमेंट्स, इट्स नॉट बिकम अ वे ऑफ लिविंग। अगर हमें वो नई दुनिया, एंड नई दुनिया नॉट नेसेसरी ग्लोबल लेवल पे, अपनी नई दुनिया, मेरा परिवार, मेरी दुनिया यहां पहले, तो फिर मेरी दुनिया यहां, फिर वो बड़ी दुनिया, अगर मुझे सचमुच में वो एक न्यू वे ऑफ लिविंग चाहिए, तो मैं इनको दो कंपार्टमेंट्स नहीं बना सकती, अपना व्यवहारिक जीवन, अपना व्यावसायिक जीवन, सो माय पर्सनल, फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ, हमने उसको एक कंपार्टमेंट बनाया, और फिर मेरी रिलीजियस लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, उसको मैंने एक अलग कंपार्टमेंट बनाया। अब हम धीरे धीरे सोच रहे थे कि यहां पे तो हमने बहुत सारी चीजों को नेचुरल कह दिया। अगर लेट्स से सिंपल थिंग, कॉम्पिटिशन, हम कहते हैं कॉम्पिटिशन नेचुरल है, और हमने अपने बच्चों को भी सिखाना शुरू कर दिया कॉम्पिटिशन नेचुरल है, तो जहां कॉम्पिटिशन होगा जेलेसी आएगी, फिर उसको ओवरकम करने के लिए तरीके भी आएंगे, फिर अगर मैं पीछे जीतने की भावना आएगी, फियर आएगा कि कहीं मैं पीछे रह जाऊं, हर्ट होगा अगर मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा। अच्छा, सबसे डीपेस्ट, दूसरे की सक्सेस को देखकर क्वेश्चन मार्क उठेगा, मतलब हम किस लेवल के सोच पर चले गए, यू नो, कि आप अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं एंड मैं नहीं हो रही, एंड बिकॉज आई थॉट इट्स अ कॉम्पिटिशन, तो इवन इफ आई पुट इट इन अ वेरी डिफरेंट वे टू माई सेल्फ एंड आई से, मैंने भी तो इतनी मेहनत की थी, मेरे पास भी तो सब कुछ था, फिर मुझे क्यों नहीं मिला जो उनको मिला, विच मीन्स आई एम सेइंग कि आपको क्यों मिला इतना जो मिला, विच मीन्स आपकी सक्सेस मुझे अच्छी नहीं लग रही। अब ये मुझे चेकिंग करनी है कि मेरी सोच की क्वालिटी क्या है, कि दूसरे की सफलता मुझे बुरी लग रही है, इज दिस स्पिरिचुअलिटी, इज दिस इवन ह्यूमैनिटी, क्या ये नॉर्मल एक जीवन जीने का या सोचने का तरीका है। अच्छा, मुझे अपनी असफलता बुरी लगे या दुख हो, वो भी अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन जब क्योंकि कंपटीशन वाली फीलिंग क्रिएट कर दी, तो दूसरे की सफलता अच्छी नहीं लग रही, तो मेरी सोच के लेवल क्या है, यू नो, तो इट्स, अब हमने कहा ये नेचुरल, क्योंकि जब मैं ऑफिस में हूं, स्कूल में हूं, कॉलेज में हूं, हमने कहा ये नेचुरल। अच्छा, यहां गए सैटरडे क्लास या संडे मेडिटेशन या जो भी सत्संग में, वहां हम सुन रहे हैं सहयोग देना है, प्यार से चलना है, डिड वी इंटीग्रेट दिस देयर?
अच्छा, आई टेल यू समथिंग, व्हेन पीपल स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग, लॉट ऑफ पीपल, स्पिरिचुअलिटी की जब जहां बात आती है, यू नो, जहां पर अपने पर काम करने की बात आती है, जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, हो ये रहा है जो कई दिन करने के बाद, साल, दो साल, तीन साल के बाद, उन्हें लगता है कि वो यहां से छूट गए, क्योंकि यहां तो रहना पड़ रहा है, और मतलब एकदम से अपने आप को छोड़ नहीं सकते, और दूसरा उनके साथ जो जिस रास्ते को वो अपनाना चाहते थे, सक्सेस भी चाहते थे, वो नहीं मिल पा रही क्योंकि, और फिर जब वो पढ़ते हैं तो फिर सारे जो गुरु भी हैं वो कहेंगे, हाँ, शुरू में जब नेगेटिविटी निकलती है तो एकदम से बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, बहुत सारे आपके कार्मिक अकाउंट्स फिनिश हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज लोगों के सामने है, तो ये खत्म कब होंगे, क्योंकि कंटिन्यूस ये जो, इसीलिए फिर लोग कहते हैं चलो मैं कुंभ भी हो आता हूँ।
कुंभ भी हो आता हूँ तो अच्छी बात है, लेकिन हो आना क्यों, क्या करने जाना और वहां से आकर क्या लेकर आना वापस। कहीं भी कुछ भी आप कर रहे हैं, आज आप शिवरात्रि कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, या आप नॉर्मल हवन कर रहे हैं एक लक्ष्य से कर रहे हैं, या आप सिर्फ मेडिटेशन ही कर रहे हैं 10 मिनट्स, या आप एक सत्संग ही कर रहे हैं, एक एम लेकर कर रहे हैं ना, अगर वो एम के बिना होगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो एम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाने का नहीं होगा तो फिर उससे प्राप्ति कैसे होगी। अभी जो आपने कहा हमने चलो लाना शुरू किया, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हम उसको ला रहे हैं। हाँ ये होगा कि मेजोरिटी मे नॉट बी विद द सेम थिंकिंग, ये तो एक्सेप्टेबल है ना, क्योंकि अगर मैं एक ऑफिस में हूँ एंड सपोज मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा चेक किया, चेंज भी करना, इट डजेंट मीन बाकी सब भी चेंज करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो चैलेंज है
और आप ऑड मैन आउट बनते जाते हैं,
ये भी है, ये भी है, लेकिन फिर फाइनली आपको अपने जीवन की प्रायोरिटीज और अपने जीवन की वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स आपको अपने लिए डिसाइड करने हैं, क्योंकि वो कर्म आपका बन रहा है ना। हमने क्या किया, मेजोरिटी जो कर रहे थे एक वाइब्रेशन भी बन जाती है, इट्स ओवरऑल, क्योंकि कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी कि एक ओवरऑल स्कूल की वाइब्रेशन, एक ऑफिस की वाइब्रेशन, फिर धीरे धीरे जो उसमें नया आता है वो भी उस प्रभाव में। अब मुझे अपने आप से पूछना है कि मुझे मासेस की तरह चलना है, विच इज ऑल्सो ओके, लेकिन वो चलने से फिर जो मेजोरिटी को उसका रिजल्ट मिल रहा है वो भी मुझे मिल रहा है ना, वो भी मुझे मिल रहा है। अगर मेजोरिटी को आज मन में चिंताएं हैं, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, तो मुझे भी हो सकता है। अगर मेजोरिटी के घर में कॉन्फ्लिक्ट रिश्तों में है तो मेरे घर भी हो सकती है, सो इट्स ओके। फिर ये सब करते हुए आई कैन नॉट से कि मैं गंगा स्नान करके मेरे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि ये नहीं होगा। मैंने चूज किया ये पाप करना, या जो भी पाप मतलब एक जो भी गलत मैंने किया वो मैंने चूज किया है, कॉन्शियसली चूज कर रही हूँ। उसका मैं रीजन कुछ भी दे सकती हूँ, मेरे आसपास सारे कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूं तो ऑड मैन हो, या अगर मैं नहीं करूं तो मुझे सफलता की वो डेफिनेशन नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए। लेट मी गिव वट एवर रीजन, इम्पोर्टेंट है चॉइस मैंने की, मेरे पास एक और चॉइस भी थी, एक दूसरी चॉइस भी थी, हो सकता है लग रही थी थोड़ी सी डिफिकल्ट, हो सकता है उसका जो रिजल्ट मिलना था मुझे, रेपरकशन जो आना था वो भी एक डिफरेंट होगा। लेट नॉट नेसेसरी, सी एक होता है आउटर रिजल्ट, एक होता है इनर रिजल्ट। हर एक टाइम में मुझे कुछ काम करवाना है, हो नहीं रहा, मैंने गुस्सा कर दिया, एक छोटी चीज मेरा काम हो गया, तो एक आउटर रिजल्ट एक इनर रिजल्ट, इनर टर्ब्यूलेंस हो गई, हलचल हलचल मच गई, काम हो गया, तो इनर ब्लड प्रेशर भी इफेक्ट हो गया लेकिन काम हो गया। दूसरा तरीका कि मैंने कहा नहीं आज ये वाला नहीं, दूसरा तरीका हो सकता है मैंने प्यार से किया, पेशेंटली किया, आई वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड, शायद मेरी किसी ने ठीक से बात नहीं सुनी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तो इवन दैट विल वर्क, हो सकता है मेरा काम थोड़ा सा उतना नहीं हुआ। तो अगर हम इसको एक इस तरह से भी देखें कि जब हम वैल्यूज पर चल रहे हैं तो इनर हमें मिल रही है, कंटेंटमेंट मिल रही है, हैप्पीनेस, हेल्थ भी मिल रही है, रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन शायद हमारा सो कॉल्ड प्रॉफिट या हमारी कंपटीशन की रेस में शायद हमें लगे थोड़ा सा कि हम पीछे हैं। अगर ये सच भी है, एक्चुअली होगा नहीं, पर अगर ये सच भी है तो भी आई नीड टू आस्क माइसेल्फ कि मेरी प्रायोरिटी क्या है लाइफ के अंदर, मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे दोनों में से, अगर मुझे लग रहा है कि दोनों नहीं आते इकट्ठे, यू नो दो चीजें अगर मैंने अपनी क्रिएट कर ली डेफिनेशन कि ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आती है, एक कम होगी एक थोड़ी ज्यादा होगी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो मेरे सामने ही है ना कि कौन सी चीज फिर ज्यादा चाहिए। अगर मैंने आज थोड़े से पैसे खिलाने से मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल गया लेकिन मुझे ये भी पता है कि उसका रेपरकशन लॉन्ग टर्म क्या है, तो चॉइस हम कर रहे हैं। तो यस चैलेंजेस आएंगे और उस चैलेंज में सिर्फ एक चीज अगर हम ध्यान रखें कि मेजोरिटी को नहीं देखें, क्योंकि अगेन वन थिंग व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि सब कह रहे हैं, सब कर रहे हैं और सबका सब कुछ ठीक चल रहा है, यू नो ये इज
लाइक बाकी तो ग्रो कर ही रहे,
सब कुछ ठीक चल रहा है। हमें नहीं पता है सबके घर में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता है हर एक के मन में क्या चल रहा है। जस्ट बिकॉज हम अच्छी तरह से तैयार होके बड़ी गाड़ी में आकर इस तरह से प्रेजेंट हो रहे हैं सबके सामने और उन्हें देख कर ये कह दिया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वो तो उस आत्मा को ही पता है उसके जीवन में क्या चल रहा है। तो इसलिए दूसरों को देखकर अपने जीवन के तरीके नहीं डिसाइड किए जाते। एंड इवन इफ आई एम नॉट सेइंग कि उनका ठीक नहीं चल रहा, बट उनकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी। इट्स लाइक सेइंग आप 140 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो और आप ठीक ही चला रहे हो, आपका कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन मेरी कैपेसिटी 80-100 की थी, लेकिन आपको देखकर मैंने भी चलाना शुरू कर दिया। नॉट नेसेसरी इट विल वर्क आउट राइट फॉर मी, सो लेट्स फोकस ऑन आर जर्नी एंड देन स्टार्ट पिकिंग अप। नहीं होगा कि इतना एकदम से हो जाए, लेकिन फिर उसको लेते जाए, वही तो जर्नी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंटीग्रेट करते जाए। इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो फिर ना यहाँ का मजा है ना वहां का मजा है।
एक्चुअली यूजुअली ये कहा जाता है कि जब हम पूजा कर रहे हैं या हम साधना करते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं जिस भी तरह की, या हम जब सत्संग में बैठते हैं, उसका प्रभाव मेरे जो है वो विचारों पर पड़ता ही है। मुझे कॉन्शियसली उसके बारे में इतना नहीं फिक्र करने की जरूरत, क्योंकि हर बार यहां पर हम जो बात करते हैं वो कहते हैं कि हम कॉन्शियस रहें, हम सचेत रहें। लेकिन यूजुअली लोग ये कहते हैं कि जब मैंने करा, अपने ऊपर काम किया ही है एक घंटा निकालकर या आधा घंटा निकालकर, उसका प्रभाव मेरे जीवन पर आता ही जाएगा और फिर मैं बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी सकता
हूं। बिल्कुल, यही तो बिलीफ सिस्टम बना ना कि मैंने की ना अपनी पूजा सुबह। सी, मुझे क्या सिखाया गया, पूजा करो, सब जो नियम पालन व्रत सब करो, सब ठीक चलेगा। ठीक है, तो मैंने भी एक्यूरेटली उसको करना शुरू कर दिया। जब वो बनाया गया था रिचुअल, हर रिचुअल भी वो किसके लिए बनाया गया था, वो रिचुअल यहां करने के लिए बनाया गया था। एंड एक्चुअली अगर हम हर रिचुअल को, या जो पूजा है, पूजा मतलब कोई बहुत सुंदर श्रेष्ठ शब्द, बहुत श्रेष्ठ विचार, एंड विच मीन्स अगर आप आज ये पूजा करो 10 मिनट के लिए, एंड पूजा करो मीन्स कौन पूजा करेगा, आप ये पूजा करो, विच मीन्स आप उस पूजा में, उस प्रार्थना में जो लिखे गए शब्द हैं, जो ज्ञान है, उसको आपने स्वीकार किया, आपने उसको अपना बनाया। अगर आप कर लो तो ऑब्वियसली आपका सारा दिन बहुत अच्छा निकलेगा।
तो आप मतलब उस कर लो मतलब आप उसको आत्मसात करो,
आप उसको बन जाओ। आप उसको जियो, आप उसको बोलो नहीं सिर्फ, आप उसको जियो। आप तो कोई भी पूजा, आप पूजा क्यों, आप एक अच्छी थॉट उठा लो सिर्फ, बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, एक अच्छी थॉट उठा लो और उसको जियो आज सिर्फ। एक थॉट उठाने से ना बाकी सारी चीजें जिग्सॉ पजल में अच्छी तरह से फिट हो जाएंगी, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगी। लेकिन आप बुक्स पे बुक्स पढ़ो, आर्टिकल्स भी लिखो, सत्संग भी करो, शेयर भी करो, अपने फेसबुक पे ट्विटर पे भी डाल दो, सबको भेज दो, लेकिन उसको जियो नहीं, तो देन हाउ कैन आई से दैट आई विल गेट द रिजल्ट। तो ऑफकोर्स इट विल वर्क, लेकिन वर्क कब, जो लिया, जो सुना, जो पढ़ा, जो मंत्र भी बोला, उसको लेकर आओ जीवन में। अगर हमने कहा मैंने वो कर लिया, वो करने से ये ठीक हो जाएगा, नो, वो फिर एक अलग बिलीफ सिस्टम से चल रहा था कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। अगर मैंने भगवान की कही हुई बातें कर ली कि यू नो ये पूजा किया, हवन भी किया, मंत्र किया, व्रत करना था वो किया, मैं गंगा स्नान भी करके आया, जो जो भगवान ने, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा हमने कहा भगवान ने बोला, तो भगवान ने बोला मैंने किया, मैंने किया मतलब इट्स लाइक
खुश हुआ,
मैंने उसका कहना माना। इट्स लाइक आप पेरेंट हो, मैं बच्चा हूं, आप मेरे जीवन, एंड इट विल वर्क, एक्चुअली इट विल वर्क, कि अगर आप मेरे जीवन चलाते हो तो मेरा एम एक ही है, मैं आपकी आज्ञा को फॉलो करूं, मैं आपकी बात मानता जाऊंगा, आप मेरे जीवन को ठीक चलाते जाओगे। फिर क्यों नहीं हुआ, देन क्वेश्चन मार्क इज के क्यों नहीं हुआ। कितने हम में से हैं जो एक्यूरेटली, जिसको हम कहेंगे ना रिलीजियसली, रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं कि एक भी नियम में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होने देंगे, फियर भी क्रिएट कर देते हैं कि ठीक, फिर क्यों जीवन में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, क्या हुआ, भगवान के लिए इतना कुछ करने के बाद भी भगवान खुश नहीं हुआ क्या, क्यों, क्वेश्चन मार्क तो उठना चाहिए ना। फिर हम कहते कोई कमी रह गई होगी, फिर हम अपने कोई तकलीफ देते हैं उसके लिए, तो वो बिलीफ सिस्टम। सी, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में हम यही सीखते थे, प्रॉब्लम कोई भी आएगी एग्जाम में बेसिक इक्वेशन राइट लिख देना पेपर पे, अगर इक्वेशन राइट हो गई फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ही रॉन्ग हो गई, अब आप उसके बाद कितने पेजेस भी आंसर भरो, नेवर गेट देयर। फर्स्ट इक्वेशन, भगवान की मर्जी से सब कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, वो एक बेसिक इक्वेशन ही अगर वो थी तो फिर जो कुछ हुआ उसकी मर्जी से, जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी उसकी मर्जी से। आज आप देखो हर जगह फेसबुक पे चैलेंज आया, डोंट वरी, गॉड नोज दैट यू हैव द पावर टू फेस इट, दैट्स व्हाई ही हैज गिवन दिस चैलेंज टू यू। मतलब किसने दिया वो चैलेंज मुझे? भगवान ने दिया वो प्रॉब्लम आपको, यू नो इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि भगवान ने वो प्रॉब्लम आपको दी और भगवान ने उस प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत भी आपको देगा, और आपको इसलिए दी क्योंकि उसको पता है कि आपके पास वो ताकत है। ऐसा नहीं होता, आप पेरेंट है, आप थोड़ी अपने बच्चों को सारा दिन प्रॉब्लम देते रहेंगे जस्ट बिकॉज यू नो कि बच्चे के अंदर वो कैपेसिटी है फेस करने की। तो फर्स्ट इक्वेशन ही चेक करनी थी कि भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, एंड उसको सोचे, मनन करें उसके ऊपर कि अगर भगवान की मर्जी से हो रहा होता तो क्या हमारी दुनिया ऐसी होती। यू नो जब ये जो बच्ची के साथ हुआ दिल्ली में जो इंसिडेंट, उसमें इतने सब लोगों ने हमें ये लिखा और ये पूछा कि भगवान को उसके ऊपर रहम नहीं आया, भगवान ने उसके से ये क्वेश्चन मार्क किस पे उठना शुरू हो जाता है कि भगवान ने उसके साथ ऐसा कैसे होने दिया। ये क्यों क्वेश्चन उठा? क्योंकि हमें यही बिलीफ था कि सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से, जो तो इसका मतलब इस तरह की भी चीज जो हुई वो भगवान की मर्जी से हुई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क तो फिर परमात्मा पे उठ गया ना, कि मतलब क्योंकि एक आत्मा भी किसी के साथ ऐसा नहीं कोई सोच सकता किसी के लिए, परमात्मा ने ऐसा सोचा, उस बच्चे ने ऐसा क्या किया होगा जिसके लिए ऐसी सजा मिलनी थी, वो तो कल्याणकारी है, वो तो क्षमा का सागर है। तो सारे क्वेश्चंस किस पे उठने शुरू हो गए? परमात्मा पे। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट वन बिलीफ सिस्टम। तो ये मुझे चेक करना होगा, क्योंकि अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखे तो हम सबका भाग्य परफेक्ट होगा। आप अगर अपने बच्चे का भाग्य लिखो परफेक्ट लिखोगे, एक वो क्राइटेरिया तो डेफिनेट होगा, और दूसरा अगर दो बच्चे होंगे तो किसी के बीच भी आप भेदभाव कर ही नहीं सकते हो। ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। अगर कोई किसी और का भाग्य लिख रहा है परफेक्ट लिखेगा और इक्वल लिखेगा, और आज दोनों ही नहीं फुलफिल हो रहे। परफेक्ट तो हम में से किसी का भी नहीं है और इक्वलिटी तो बिल्कुल ही नहीं है। दैट्स सो मच एक्सट्रीम हर चीज में। किसी का अपना चार्टर प्लेन है, कोई डस्टबिन से जाके खाना ढूंढ रहा है, इतनी अनइक्वालिटी परमात्मा कर रहा है। कोई 100 वर्ष की आयु तक हेल्दी है, कोई पैदा होती बीमार है। सो वेयर इज द इक्वालिटी? तो जब दोनों क्राइटेरिया ही नहीं फुलफिल हो रहे, वाई? सो वी फर्स्ट चेक द बेसिक इक्वेशन। सेकेंड, अगर परमात्मा की मर्जी से नहीं चल रहा, दूसरा हमने सुना था कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, एंड क्योंकि कर्म हमारे अलग अलग है, परफेक्ट नहीं है, फल भी परफेक्ट नहीं होगा, और अलग अलग है तो फल भी अलग अलग है। तो पहले मुझे दो बिलीफ सिस्टम्स में से एक को चूज करना पड़ता है। यू नो लुक एट इट, हमने बचपन से दोनों सुने, एज अ चाइल्ड हम सबने दोनों सुने, हर सत्संग में भी हम दोनों सुनते हैं, अगर हम कहीं भी थॉट स्पिरिचुअलिटी भी शेयर कर रहे हैं दोनों सुनते हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग विद गॉड्स विल, एंड दूसरा एज यू सो यू शैल रीप, एंड लुक एट द वंडरफुल थिंग, हम दोनों बातों को एक्सेप्ट करते हैं। नाउ थिंक, दोनों कैसे सच हो सकते हैं? या तो एवरीथिंग, यू नो, अगर मैं कहूं आपकी मर्जी से मेरा जीवन चल रहा है, या मैं कहूं जो मैं करूंगी उसका फल मुझे मिलेगा, तो फिर आपकी मर्जी नहीं इंटरवीन हो। तो दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट थी, हमने दोनों के लिए कहा।
कई बार कहते हैं कि शायद कि फल देने वाला जो है, फल तय करने वाला, भाई आपके कर्म का फल क्या होगा,
राइट,
वो कौन तय करेगा?
तो फिर परमात्मा करता, ठीक है। अगर सपोज वो थर्ड ऑप्शन भी हम लेते हैं, सपोज आप परमात्मा है, आप पेरेंट ही हैं, चलो परमात्मा ने, एंड गलती की बच्चे ने, और फिर रियलाइज भी किया, आज हम कुंभ मेले पे क्यों जा रहे? रियलाइजेशन कि हाँ, एक्सेप्टेंस कि मैंने कोई पाप किए हैं, एंड मैं उसकी रियलाइजेशन, फॉरगिवनेस। हर रिलीजन में कन्फेशन का कॉन्सेप्ट है कि हम कन्फेस करते हैं, कन्फेस करके हम क्षमा मांगते हैं, हम ये भी प्रॉमिस करते हैं कि हम फिर नहीं करेंगे। तीनों चीजें कर दी, कन्फेस भी कर दिया, फॉरगिवनेस भी मांग ली, एंड प्रॉमिस भी किया कि हम फिर से नहीं करेंगे। अगर आपके बच्चे ने आज गलती की हो और वो ये तीनों चीजें करे उसके बाद, आने के बाद आपका एटीट्यूड क्या होगा उसके बाद?
विल फॉरगिव,
नॉट एटलीस्ट यू विल वेवर डाउन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड यू विल से ऑफकोर्स अब ये इस बार ठीक से करेगा। हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा फिर ऐसा? और वो तो कल्याणकारी है, वो तो प्यार का सागर है, क्षमा का सागर है। फिर वो सपोज फिर हम इस बच्ची को लें, अगर हम कहें ये कार्मिक अकाउंट है, तो वो क्षमा का सागर ऐसी सजा दी, थोड़ा सा सजा को लाइटर नहीं कर सकता था? अगर कोई और आत्मा के पास भी ये पावर होती आज कि भाग्य लिखती, कोई ऐसा लिखता किसी के लिए भाग्य? या इतना कुछ जो हमारे आसपास हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी अगर होती तो हमारा समाज ऐसा ना होता जो आज है। लेकिन क्योंकि परमात्मा इंटरवीन नहीं करते, एंड सिर्फ जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल हमें मिलता है, इसीलिए आज फल बहुत बड़े बड़े रूप में हमारे सामने आ
रहे हैं।
आई डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ। अगर आज मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती, सिंपल सिंपल देखो ना, मैं वॉक पे नहीं जाती, पानी नहीं पीती रोज ज्यादा, ठीक से खाना नहीं खाती, बीमारी मुझे होने,
तो
मैं कोई डिसाइड थोड़ी कर रहा है, मैं चूज कर रही हूँ, मैं डिसाइड कर रही हूँ, मैं अपनी डेस्टिनी लिख रही हूँ। आज मेरा आपके साथ रिलेशनशिप है, मैं ठीक से बात नहीं करूं, चिल्लाती रहूं, गुस्सा करूं, जेलेसी भी क्रिएट करूं, तो रिश्ता खराब होगा। ये किसने डिसाइड किया? नो थर्ड पर्सन विल डिसाइड इट। एंड यही आज हम चूज कर लें कि नहीं, आज से मैंने अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, सारी दुनिया भी डिसाइड कर ले तो वो मेरी हेल्थ को नहीं रोक सकते। हु विल डिसाइड इट फॉर मी? आई एट एवरी स्टेप। इसीलिए जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, इज वर्किंग एवरीवेयर। कोई और डिसाइड करे और सब करे ना, क्योंकि ये सब हमने शास्त्रों में सुना, वो लिखा हुआ है, किताब बनी हुई है, हर एक थॉट की किताब बनेगी हर आत्मा की। थिंक अबाउट इट, 700 करोड़ एंड देन 50,000-60,000 थॉट्स एवरी डे, कौन सा रिकॉर्ड होगा कहाँ पर? एंड देन फिर टू चूज कि ये थॉट क्रिएट की उसके लिए इसको ये रिजल्ट मिलना चाहिए। जो हम करते जा रहे हैं, हमारे हमने प्रकृति को एक्सप्लॉइट किया, हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है, थोड़ी परमात्मा ने कहा आपने ये किया इसलिए आपको ये रिजल्ट मिल रहा है ना, हमने किया हमें वो रिजल्ट मिलता है। आज हम प्रकृति का फिर ध्यान रखना शुरू करते हैं, हमें वो रिजल्ट भी मिलता है। एवरी स्टेप पे इट इज हैपनिंग लाइक दैट। सो
ये वो मंच है सतशिवानी, जहां पर हर बार कुछ नया हमें सोचने को मिलता है, एक्चुअली मनन करने की बात है, और हर बिलीफ सिस्टम को एक क्वेश्चन डालने की बात है। तो आज आप एक्चुअली आई डेंट रियलाइज हम शिवरात्रि पर बात कर रहे थे और बात हमारे ही यू नो कर्म और फल पर पहुंच गई। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति।
सचमुच में जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है, हर धर्म शास्त्र ने कहा, लेकिन हम आज तक यही सोचते रहे कि फल तय करने वाला कोई और है, वो परमात्मा भी हो सकता है, और कई बार हमने कहा कि वो यूनिवर्स भी है, यूनिवर्सल लॉ भी वर्क करता है। लेकिन आज एक बात हम और सोच सकते हैं कि क्या मैं ही तय करता हूं उस फल को जो मुझे मिलना है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं उसका कॉन्शियस जो देखने वाला है वो तो मैं ही हूं। मैं स्वयं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो फल भी मुझे ही मालूम होगा कि क्या होगा। ये सोचें और अगली बार हम फिर आपके साथ इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कोई बात मन में है आप हमें फोन पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। इफ यू विश